स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 26 अप्रैल दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी की भारी जीत, आम आदमी पार्टी ने हार का ठीकरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फोड़ा। पार्टी के लिए क्या है चुनाव के मायने?
संभव है कि उनकी सरकार पर भी खतरा आए, उनकी पार्टी पर भी खतरा आए और उनको लीडरशिप बचाना भी मुश्किल हो जाए, और जहां से आप शुरू हुआ था वो सफर शायद 5 साल भी पूरा हो ना हो, अब उस पर भी सवाल हो जाएगा।
भारत प्रशासित कश्मीर में सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स पर लगाया 1 महीने का प्रतिबंध, और दुनिया जहान में आज होगी फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा।
60 वर्ष में पहली बार कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है पहला दौर पार नहीं कर पाई है। आर्थिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं, सिक्योरिटी कंसर्न हैं, इमिग्रेशन और एंटी इस्लामाइजेशन के ऊपर।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। दिल्ली में आज नगर निगम चुनाव की मतगणना में भाजपा ने अभी तक भारी जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। आम आदमी पार्टी ने इस नतीजों के आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभी तक समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भाजपा को 270 में से 181 सीटें और आम आदमी पार्टी को 48, वही कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के कर सुधारों पर से पर्दा उठाएंगे। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि व्यापार कर में 35% से 15% की भारी कटौती पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इसमें विदेशों से पैसा वापस लाने वाली कंपनियों को इसके एवज में कुछ राहत देने के बारे में भी घोषणा हो सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इमैनुअल मैक्रों के चुनाव प्रचार की टीम ने पुष्टि की है कि कम से कम 5 बार साइबर हमला करके उनके चुनाव प्रचार को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी साइबर डेटा चोरी नहीं हुआ है। ये भी बताया गया है कि मैक्रों ही अकेले उम्मीदवार हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी ट्रेंड माइक्रो ने कहा है कि पॉन स्टॉम नाम के एक समूह के खिलाफ साइबर हमले में शामिल होने के सबूत मिले हैं और इस समूह के रूसी सुरक्षा एजेंसियों से संदिग्ध रिश्ते हैं। हालांकि रूस ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमरीकी सेना ने दक्षिणी कोरिया में अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा तंत्र थार्ड की तैनाती शुरू कर दी है। दक्षिण कोरिया में सुआंगजू शहर के स्थानीय लोग थार्ड की तैनाती का विरोध कर रहे हैं और इस बीच लोगों की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भी इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इन प्रदर्शनों में शामिल कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये तैनाती दक्षिण कोरिया के कानून का उल्लंघन है। वहीं चीन ने भी इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता गेंगे जुआंग ने कहा कि बीजिंग इसका जवाब देगा। चीन अमेरिका और दक्षिण कोरिया से मजबूती से कहना चाहता है कि ये कदम क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाएगा और चीन की सामरिक सुरक्षा हितों के लिए भी ये नुकसानदायक है। चीन अमेरिका और दक्षिण कोरिया से थार्ड तंत्र को वापस लेने की अपील करता है। चीन अपने हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ये देखेंगे शुआंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस की खुफिया एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद के समर्थन वाली सेना ने 4 अप्रैल को खान शकौन में संदिग्ध रासायनिक हमले के लिए सारिन गैस का इस्तेमाल किया था। फ्रांस के विदेश मंत्री जियां मार्क एरोल्ट ने कहा है कि हमले के स्थान से मिले नमूनों में हेक्सामाइन नाम का एक रसायन मिला है जिसका इस्तेमाल सीरिया की सरकार नर्व एजेंट बनाने के लिए करती है। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक खान शकौन में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर में सारिन गैस बनाने की तकनीक उपलब्ध नहीं है। इस हमले में 87 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस के विदेश मंत्री जियां मार्क एरोल्ट ने इस बारे में ये कहा।
Nous savons de sources certaines que le procédé de fabrication du sarin
एक खास स्रोत से हमें सारिन गैस बनाने की प्रक्रिया का पता चला है। वो सीरिया लेबोरेटरी में बनाए जाने में इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया के समान है। सरकार इसी तरीके से रासायनिक हथियार बनाती है और इससे हम ये स्थापित कर सकते हैं कि हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले हमले के नमूने हमने रखे थे और उससे तुलना करके ये पता चला है कि 4 अप्रैल को जो सारिन गैस का इस्तेमाल किया गया वही सारिन गैस 29 अप्रैल 2013 में साराकेब में इस्तेमाल की गई थी। ये थे जियां एरोल्ट के शब्द। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद जीत का सिलसिला जारी रखा है। दिल्ली नगर निगम के चुनावी नतीजों में बीजेपी को भारी जीत मिलती दिख रही है। 272 में से 270 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को अब तक के रुझान में 181 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को मात्र 48 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को एमसीडी चुनाव में 30 सीटें मिलने की संभावना नजर आ रही है और 11 सीटें निर्दलियों के खाते में गई हैं। दरअसल इस चुनाव को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कामकाज पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे थे, लेकिन चुनाव में मिली करारी हार के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कथित छेड़छाड़ को पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक रिपोर्ट के साथ जुबैर अहमद।
2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का लगभग सफाया हो गया था। उसे 70 में से केवल 3 सीटें मिली थी। कांग्रेस तो कहीं नजर भी नहीं आ रही थी, लेकिन दिल्ली नगर निगम या एमसीडी के चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया है कि दिल्ली में इन दिनों बीजेपी लहर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पछाड़ने के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल था। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली सभी की दिल्ली है।
यहाँ हर गली में एक इतिहास बसता है, 200 साल, 500 साल, हजारों साल का। लेकिन उस दिल्ली की चर्चा कैसे होती है जिसे लगता है हर दिन मुख्यमंत्री के बयान से निगेटिविटी की दुर्गंध फैलाई जा रही है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उसने इस दर्द को समझा है और आज ऐसे पार्टियों को नकार दिया है जो लोग सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, कानून तोड़ते हैं, गैर संवैधानिक रास्तों पर चलने की बात करते हैं।
आम आदमी पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये बातें कहीं। पार्टी के नेता आशुतोष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या वजह है कि उनकी सरकार के अच्छे काम बीजेपी के बहुमत वाले एमसीडी में भ्रष्टाचार के बावजूद नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली के दाम आधे किए, पानी मुफ्त किया। पिछले 2 साल से ना तो बिजली के दाम बढ़े हैं ना पानी के दाम बढ़े हैं। इस दिल्ली शहर के अंदर आज अस्पतालों के अंदर लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। जिस बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लूटा, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है ये, और फिर भी लोग उनको वोट दे रहे हैं, ये तो आप मान सकते हो इस बात।
एमसीडी चुनावों में बीजेपी की पिछले 10 सालों में ये तीसरी जीत थी। इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थीं। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े आलोचकों में से एक रहे हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच रिश्ते नाजुक रहे हैं। केंद्रीय सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने केजरीवाल सरकार को केंद्र के साथ मिलकर काम करने का एक बार फिर से निमंत्रण दिया।
अभी भी हम लोग प्रदेश सरकार को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर वो साथ देगा नहीं देगा वो खुद तय करेंगे। मगर मेरा कहना इतना है, एक शुभ अवसर है, अच्छा मौका दिया लोगों ने, इच्छा इससे बाहर आया, इच्छा क्या है, दिल्ली आगे बढ़ना चाहिए तो तभी संभव होगा केंद्र के साथ मिलकर काम करें।
आम आदमी पार्टी के उदय से पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार 17 साल तक रही थी। इस पूरे काल में मुख्यमंत्री थीं शीला दीक्षित। इस बार उन्होंने कहा कि अजय माकन ने उन्हें चुनावी मुहिम में शामिल नहीं किया। अजय माकन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन आज की हार के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया।
अगर शीला जी ये कहती हैं कि हमारे में अग्रेशन नहीं था, तो शायद उनको लगता है कि जब संदीप दीक्षित मेरे खिलाफ बोल रहा है या वो मेरे खिलाफ बोल रही हैं, तो मैं उसमें अग्रेशन वापस लेकर के आऊं, तो वैसा अग्रेशन मैं नहीं ला सकता।
विशेषज्ञ कहते हैं कि हार के बाद इस तरह से खुलकर कांग्रेस में भीतरी लड़ाई से पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के मनोज तिवारी ने हारी हुई दोनों पार्टियों को सकारात्मक होने की सलाह दी और कहा कि अगले 1 साल में एमसीडी में भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
आम आदमी पार्टी की रणनीति में कहां गड़बड़ी रह गई और बीजेपी ने कैसे ये कमाल किया, यही जानने के लिए मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्रा से।
रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइन पे है, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जिस किस्म से मोदी की हवा चल रही है, उसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही किया कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पुराने सारे पार्षदों का टिकट काट के वो एक रिस्क उन्होंने लिया। एक दूसरा रिस्क हल्का बीजेपी ने लिया मनोज तिवारी को आगे करके, जो दिल्ली के लिए भी नए हैं, दिल्ली के समाज के लिए भी नए थे और बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर पंजाबी और बनिया वोटर है, तो एक नए आदमी को आगे करके उन्होंने थोड़ा रिस्क लिया। ये दो काम ही उन्होंने अपनी ओर से किए, बाकी काम खुद ब खुद हो गया या कुछ केजरीवाल ने कर दिया, तो इससे बीजेपी आसानी से जीत गई। हालांकि जितना शोर वो मचा रहे थे या एग्जिट पोल से मच रहा था उस लेवल पे तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन तब भी एक्सपेक्टेड लाइन पे है, अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं।
नहीं, लेकिन केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल से कहाँ गलती हुई है, क्या पढ़ने में गलती हुई है, क्या समझने में गलती हुई है और स्ट्रेटजी के लिहाज से कहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत कमजोर रही और कहाँ पर बीजेपी ने वहाँ पर नंबर गेन किया?
सबसे बड़ी गलती तो केजरीवाल की यही थी कि जिस चुनाव में उनको अपना सिर नहीं घुसेड़ना चाहिए था या अपने को इशू नहीं बनाना चाहिए था, वहाँ उन्होंने जबरदस्ती विजेंद्र गुप्ता की तस्वीर छापी, अपनी तस्वीर कि हम बढ़िया शासन देंगे, विजेंद्र गुप्ता बहुत खराब है। इस तरह के इशू उठाने की जरूरत नहीं थी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और जो दिल्ली में म्यूनिसपैलिटी का हाल रहा है, डेंगू चिकनगुनिया से लेके गंदगी तक, बार बार गंदगी जिसके, तो कायदे से जिसको इशू बनाना चाहिए था वो इशू बना नहीं, और पता नहीं अपने किस शासन के भ्रम को उन्होंने आगे किया और बीजेपी को बहुत खराब बताने का अभियान चलाया, तो इसी जाल में वो फंसे हैं और ये फाइनली उनको काफी महंगा पड़ा और पड़ा नहीं अभी पड़ेगा, क्योंकि संभव है कि उनकी सरकार पे भी खतरा आए, उनकी पार्टी पर भी खतरा आए और उनको लीडरशिप बचाना भी मुश्किल हो जाए, और जहां से आप शुरू हुआ था वो सफर शायद 5 साल भी पूरा हो ना हो, अब उस पर भी सवाल हो जाएगा।
आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं आप?
आम आदमी पार्टी का भविष्य काफी मुश्किल लग रहा है और पार्टी चल पाएगी नहीं चल पाएगी इसी पे सवाल है, क्योंकि जो जिस तरह के आंदोलन से पार्टी निकली थी और जो जो वायदे किए थे और व्यवहार में जो चीजें सामने आई उनमें बहुत बड़ा फाँक है। कई दफे आंदोलन और व्यवहार में फर्क हो जाता है, लेकिन उसकी एक सफाई होती है, बहुत साफ बताना होता है कि हाँ ये हमारी मजबूरी है, सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो लोग हमको मार देंगे या लोग हमको काम नहीं करने देंगे, गाड़ी लेना हमारी जरूरत है, तो कुछ चीजें तो एक्सप्लेन की जा सकती है कि जो हम बोल रहे थे और जो हमारे व्यवहार में अंतर आया है उसकी कुछ तो जेन्युइन वजह बताई जा सकती है, उसके लिए माफी मांगी जा सकती है, लेकिन एकदम से आप अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और हर चीजों में विकल्प देने की बात और लोगों से साथ बात पूछना, उस समय नाटक भी हुए कि बार बार लोगों के पास जा रहे हैं, और दूसरे लेवल पे ये भी हुआ कि सारी पार्टी छोड़ के जाती रह गई, सारे डिसीजन एक आदमी ले रहा है, एक कोटरी ले रही है, तो जो व्यवहार में दिखा और जो आंदोलन का मुद्दा था उन दोनों के बीच भारी गैप है।
कांग्रेस की अगर बात करें तो अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, कांग्रेस के लिए टेक अवे क्या है, मतलब कांग्रेस क्या कभी वापसी कर पाएगी दिल्ली में या कांग्रेस के साथ क्या होगा?
कांग्रेस का वोट परसेंटेज काफी बढ़ा है इस बार, वो बहुत साफ दिख रहा है। दूसरे लेवल पे अजय माकन ने एक कोशिश ये की थी कि जो कांग्रेस के 20-25 साल से जो कांग्रेसी थे बड़े नेता और एक तरह से जकड़ उनकी पार्टी पे थी, उसमें थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश की, कुछ नए लोगों को अवसर देने की, वालिया जी हैं, शीला जी थी, लवली, इस किस्म के सारे लोग 20 साल 15 साल 25 साल वाले हैं, तो उनकी जगह कहीं ना कहीं पार्टी को एक नया रंग रूप देने की कोशिश भी अजय ने इस बार की थी। वो कोशिश मुझे लगता है कुछ हद तक तो कामयाब हुई है, वोट लाने में भी कांग्रेस को अपना ट्रेडिशनल वोट भी कुछ वापस आया है, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस तब भी मैं कहूंगा कि कई चीजें निगेटिव हैं तो कई पॉजिटिव भी हैं, जिसमें एक यही है कि आप अगर कल को और गिरती है इससे तो कांग्रेस इमर्ज होकर दिल्ली में फिर अपने वापस पुराने पोजीशन पे आ सकती है।
ये थे राजनीतिक विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्रा, जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लिए ये नतीजे गंभीर खतरे के संकेत हैं।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में सरकार ने कई सोशल मीडिया साइट्स पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खबर की पूरी जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी के श्रीनगर संवाददाता रियाज मसरूर से।
जी देखिये, पहले से इसमें अटकलें लगाई जा रही थी लोकल मीडिया में, लेकिन आज अचानक जो जम्मू कश्मीर सरकार का होम डिपार्टमेंट है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और जिसमें उन्होंने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल प्लस और यूट्यूब समेत 16 ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैन लगा दी है जिसपे लोग एक दूसरे से बात करते हैं या पोस्ट करते हैं। और ये कहा गया कि ये बैन फिलहाल तो एक महीने के लिए है, लेकिन फर्दर डिसीजन जो है वो बाद में लिया जाएगा।
रियाज, क्या वजह रही इस तरह से सोशल मीडिया पर बैन लगाने की?
जैसा आपको मालूम है कि 2008 से ही यहाँ पे इंटरनेट बैन करने का एक कल्चर था, इंटरनेट शटडाउन पूरे भारत, पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा कश्मीर में हुए हैं, तो अभी भी इंटरनेट बंद ही है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है कुछ ऑफिस में। लेकिन अचानक ये बंद करने के पीछे जो बैकड्रॉप है वो ये है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 महीने में हालात ठीक हो जाएंगे, फिर टॉक्स होंगी, और उसके बाद यहाँ यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स, क्योंकि बहुत बड़ा काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड है जिसमें आर्मी, पुलिस, CRPF, PSF और इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी होते हैं, 2-3 घंटे तक वो मैराथन मीटिंग हुई और उसमें एक एजेंडा बनाया गया कि 3 महीने तक कैसे हालात ठीक करने हैं। तो ये फैसला जो है, इसमें पुलिस का एक बिलीफ ये लगता है कि जब भी कुछ होता है तो उसकी वीडियोज और उसकी पिक्चर्स जो है वायरल हो जाती हैं, जिससे दूसरे जिलों में जो लोग हैं वो भावुक हो जाते हैं, प्रवोक हो जाते हैं और उसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता है। तो ये एक रैशनल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है।
ये थे श्रीनगर में BBC संवाददाता रियाज मसरूर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को हुए नक्सली हमले में CRPF के 25 जवान मारे गए थे और 6 जवान जख्मी हुए थे। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि नक्सलियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता सलमान रावी दिल्ली से सुकमा पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की और पूछा कि नक्सली हमले की जाँच या कार्रवाई के नाम पर वहाँ क्या कुछ हो रहा है।
जंगलों के अंदर का जो रास्ता आता है सुकमा को जगदलपुर से, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, वो लोग घबराए हुए हैं, ऐसा लगता है कैंपों में देखकर के सब अंदर अंदर सिमटे हुए हैं, क्योंकि एक मनोबल पे तो असर पड़ा ही है। लेकिन ये दावा कर रही है पुलिस और सुरक्षा बल के कॉम्बिंग ऑपरेशन जंगल के अंदर चल रहा है ताकि वो जो 106 हथियार लूट कर लेकर गए हैं माओवादी वो बरामद किए जा सके। और ये भी अंदेशा है पुलिस को और यहाँ के प्रशासन को कि इतने हथियार जो गए हैं उसकी वजह से माओवादी हो सकता है कि कंपनी भी बना ले, तो इसलिए भी ये ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन जो आम जनजीवन है वो प्रभावित लगता है, लोग खौफ में हैं, क्योंकि सुकमा में हमेशा इसी तरह से होता रहा है।
सलमान, आप वहाँ पहुँचे हैं सुकमा, वहाँ पर भौगोलिक परिवेश क्या ऐसा है कि अक्सर जब हमले होते हैं तो सुरक्षा बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है?
ये बात बिल्कुल आपने सही कही, नक्सलियों का जहां तक सवाल है, सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ में कभी इस इलाके में कोई कामयाबी नहीं मिली, और खास तौर पर ये जो महीना है अप्रैल का, जितनी बड़ी वारदातें यहाँ इस इलाके में हुई हैं वो इसी पीरियड के दौरान हुई, अप्रैल और मई के महीने में, चाहे वो जीरम घाटी का सवाल हो अगर जिसमें कांग्रेस के नेता मारे गए, उससे पहले ताड़ मेला में जिसमें 76 CRPF के जवान मारे गए थे, और फिर ये जो हमला हुआ है, ये सब इसी पीरियड का है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक साथ 5 या 10 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में कभी मारा हो इस इलाके में, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ये जो टोपोग्राफी है इसकी, जैसा आपने पूछा कि ये इसका बॉर्डर लगता है इस इलाके का सुकमा का ओडिशा से, सुकमा का ही बॉर्डर लगता है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, और ये पूरा जंगलों का इलाका है और बहुत सारे इलाके इसमें इनएक्सेसिबल है। और एक बात जरूर है कि ये जो कांड हुआ है सोमवार को, ये जवान सड़क निर्माण का जो काम हो रहा था उसको सुपरवाइज कर रहे थे। आप सुकमा जब आएंगे जगदलपुर से या दंतेवाड़ा से तो आपको जगह जगह पर नजर आएगी गाड़ियां जली हुई, क्योंकि वो जो सड़क के काम में गाड़ियां लगी हुई थी उसको नक्सलियों ने जलाया है। सुकमा से लेकर दोरनापाल की जो सड़क है वो कभी बन नहीं पा रही थी, उस सड़क पर भी काम आप अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सालों में ये सड़क नहीं बन पा रही है, माओवादियों का कितना स्ट्रांग है, कितने ताकतवर है, वो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है।
जानकारी दे रहे थे सुकमा में मौजूद BBC संवाददाता सलमान रावी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस की मुख्य राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में ही बाहर हो गई हैं। अब मुख्य मुकाबला 2 ऐसे उम्मीदवारों के बीच है जिनकी पार्टियों को हाल तक राजनीतिक रूप से बहुत दमदार नहीं माना जा रहा था। फ्रांस लंबे समय से अपनी उदार छवि के कारण दुनिया भर में विख्यात रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में वहां चरमपंथी घटनाओं ने लोगों को चिंता में भी डाला है। तो क्या इन चुनावों के बाद उसकी तस्वीर बदल सकती है? फ्रांस के चुनाव से और क्या सवाल उठ रहे हैं? दुनिया जहान में निखिल रंजन ने इस हफ्ते यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान।
दुनिया के पुराने लोकतंत्रों में ऐसा कम ही होता है जब स्थापित राजनीतिक दलों में से सभी को एक सिरे से जनता नकार दे। यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लोग अपना अगला राष्ट्रपति चुन रहे हैं और अब दूसरे दौर में इमैनुएल मैक्रों का मुकाबला मरीन लपेन से है। इन दोनों उम्मीदवारों ने पहले दौर में 9 उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर दूसरे दौर में जगह बनाई है। मरीन लपेन की पृष्ठभूमि जरूर राजनीतिक रही है, लेकिन मैक्रों की पार्टी का जन्म हुए तो अभी एक साल भी नहीं हुआ। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर आर के जैन,
60 वर्ष में पहली बार कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है पहला दौर पार नहीं कर पाई है। आर्थिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इमिग्रेशन और एंटी इस्लामाइजेशन के ऊपर। अब इन कारणों की वजह से मैक्रोन जो है उभर के आए हैं एक प्रकार के राजनीतिक नो सीखिए के रूप में, और जो उनकी नई जो राजनीतिक दल है जो सिर्फ अप्रैल 2016 के बाद जिसका जन्म हुआ ऑन द मूव ऑन मार्शे, इसकी एकदम चढ़त जो है एक प्रकार से अजीब है। फ्रेंच वोटर्स जो है मेन स्ट्रीम पार्टी से अप्रसन्न होकर मैक्रोन को उन्होंने अपना समर्थन दिया। दूसरी ओर लपेन है, हालांकि उन्होंने कोशिश काफी करी है कि जो एक राइट विंग एक्सट्रीम पार्टी की जो स्वरूप उनके पिता ने इस पार्टी को दिया था, उन्होंने कुछ हद तक इसको तब्दील करने में सफल हुई है, लेकिन मौलिक रूप से वो ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध हैं, ईयू के विरुद्ध हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इमिग्रेशन के खिलाफ हैं।
फ्रांस के बाहर लोगों को हैरानी इसलिए भी हो रही है कि आखिर जब देश में चरमपंथ सिर उठा रहा है, प्रवासियों की समस्या ने लोगों की नींद उड़ा रखी है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, तो फिर एक उदारवादी नेता के पीछे देश क्यों चल पड़ा है। इस तरह की परिस्थितियों में यूरोप के बाहर के देशों में दक्षिणपंथी उम्मीदवारों को सफलता मिलने की कई मिसालें हाल के वर्षों में नजर आई हैं, लेकिन फ्रांस को करीब से देखते आ रहे लोग मौजूदा स्थिति से बहुत हैरान नहीं हैं। वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नायर करीब 2 दशक से फ्रांस में रह रहे हैं।
फ्रांस की जो सोसाइटी, जो उनका समाज है या देश का जो पूरा फाउंडेशन है बेस देखेंगे, फ्रांस एक निहायत ही सोशलिस्ट और उदारवादी देश रहा है। इसमें जो बेसिस है लोगों के सोचने का, उनके पॉलिटिकल थिंकिंग का, वो इतना चेंज नहीं हुआ है। हालांकि प्रेशर काफी है और आप देख सकते हैं कि आज मारीन लपेन जो कि एकदम ही चरमपंथी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, उनको 38 से 40% तक सपोर्ट मिला है फ्रांस में दूसरे दौर के लिए। ये एक अचंभा है, लेकिन फिर भी 60% लोग जो है वो अभी भी अपने ट्रेडिशनल व्यूज पे कायम है कि हम सब एक हैं और हमें मतलब एक ह्यूमेन सोसाइटी बना के रहना है।
पहले दौर में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले इमैनुएल मैक्रों मध्यमार्गी, आधुनिक और उदार माने जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि उन्हें आगे बढ़ाने में मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की बड़ी भूमिका है। यूरोपीय संघ के हिमायती नए कारोबारियों की पसंद प्रवासियों और अर्थव्यवस्था के प्रति नरम रुख रखने वाले पूर्व बैंकर मैक्रों को फ्रांस के बड़े और औद्योगिक शहरों में काफी सफलता मिली है। राजधानी पेरिस भी इनमें से एक है। मैक्रों के उलट मरीन लपेन देश में बढ़ते चरमपंथी हमलों को ज्यादा बड़ी चुनौती मानती हैं और उनके चुनाव अभियान में भी सारा जोर इसी से लड़ने पर है।
मैक्रों चाहते हैं कि फ्रांस न केवल यूरोप में रहे बल्कि यूरोप को और मजबूत बनाए। मरीन लपेन चाहती हैं कि यूरोप बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है और उस पर फ्रांस के अपनी एक तरह से जो सोवरेनिटी है वो कम हो गई है, तो वो चाहती हैं कि यूरोप को थोड़ा नियंत्रण में किया जाए और जो फ्रांस की सरकार है उसमें ज्यादा पावर आना चाहिए। दूसरा है, मरीन लपेन ने बताया कि वो यूरो से बाहर जाने के लिए एक रेफरेंडम करेंगी और फ्रेंच फ्रैंक को, जो कि 1999 में हटा दिया गया था यूरो के आने के बाद, उसे वापस लेके आएंगी। मैक्रों का कहना है कि वो यूरो को बरकरार रखें क्योंकि यूरो के आने से फ्रांस की इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिला है, काफी सपोर्ट मिला है और वो चाहेंगे कि फ्रांस का इंटीग्रेशन यूरोपियन यूनियन के साथ और बढ़े। तीसरा, मैक्रों कहते हैं कि वो माइग्रेशन के ऊपर कोई मतलब रोकेंगे नहीं, नियंत्रण तो रखेंगे, लेकिन मरीन लपेन चाहती है कि वो तुरंत रोक दिया जाए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों को ही हर साल आने की परमिशन दी जाए फ्रांस में।
पहले दौर के चुनाव के बाद हुआ पहला सर्वेक्षण बता रहा है कि इमैनुएल मैक्रों को दूसरे दौर में करीब 62% वोट मिल सकता है। मरीन लपेन का धुर दक्षिणपंथी होना मैक्रों के लिए फायदेमंद भी है और मौजूदा दौर में सबसे बड़ी चुनौती भी। बहुत से लोगों को ये भी लग रहा है कि फ्रांस 2 हिस्सों में बट गया है, कुछ कुछ अमरीका की तरह।
ये जो 40% की जो मैंने बात की है, जो की मरीन लपेन के साथ अब जुड़ गए हैं, ये उन क्षेत्रों में से हैं जहाँ पे पहले मतलब इंडस्ट्री का काफी प्रभाव था और अब वहाँ के इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं या बहुत प्रेशर में हैं, तो वहाँ पे काफी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है पिछले 5-6 सालों में। तो इस कारण से एक तरह से नाराजगी वहाँ पर है बिल्कुल इन इंडस्ट्रियल टाउन्स में फ्रांस के, और उन्हें लगता है कि इस रेस में जो सरकार का जो रोल रहा है वो ज्यादा पेरिस और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहा है कि उन कंपनीज को या उन क्षेत्रों को सपोर्ट किया गया है और इन पुराने फ्रांस के क्षेत्रों को वो लोग भूल चुके हैं। तो उनमें एक तरह से खौफ है, एक तरह से गुस्सा है और इस गुस्से को प्रकट कर रहे हैं मरीन लपेन के साथ जाकर। दूसरी तरफ आप मैक्रों का सपोर्ट देखेंगे तो ये ज्यादा आया है बड़े बड़े शहरों से, जैसे पेरिस में काफी अच्छा सपोर्ट बेस है और फ्रांस के पश्चिमी भागों में जैसे बोर्डो या बियारेज या तुलूज उन शहरों में, लेकिन दक्षिण फ्रांस में आप फिर से जाएंगे जहाँ पे अल्जीरियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, मतलब अप्रवासी अरबिक पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर देखेंगे कि मरीन लपेन के लिए सपोर्ट काफी ज्यादा है क्योंकि वहां जो जो कहते हैं ओरिजिनल या ट्रेडिशनल फ्रेंच वहां पे जो कम्युनिटीज हैं उन्हें एक तरह से खतरा लग रहा है कि ये माइग्रेशन के कारण जो कि काफी बढ़ चुका है पिछले 5-6 सालों में उन पर एक दबाव आया है, उनके उनका अपना फ्यूचर खतरे में उन्हें नजर आ रहा है।
नीदरलैंड्स के चुनाव में भी दक्षिणपंथी पार्टियों के उदय की उम्मीद जताई गई थी लेकिन नतीजों ने सब उलट दिया। इस वक्त फ्रांस भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा है। फ्रांस के इस चुनाव में उसकी पहचान और यूरोप की नई तस्वीर के रंगों का भी खाका तैयार होने की बात कही जा रही है। कुछ सवाल और हैं जिनके जवाब इस चुनाव में ढूंढने की कोशिश हो रही है।
पहली बात तो यह है कि यूरोप का भविष्य क्या होगा। फ्रांस जो कि एक फाउंडिंग मेंबर है यूरोपीय संघ का, यदि वो चरमपंथी की ओर यूरोप और यूरोपियन यूनियन के विरुद्ध जाता है तो समस्त यूरोप का भविष्य जो है वो डावाडोल है। दूसरा जो मसला है फ्रेंच वोटर्स के सामने वो ये है कि फ्रांस का अस्तित्व, उसकी आइडेंटिटी भविष्य में क्या होगी। और मेरे ख्याल से हमें एक जो गलती अक्सर जो लोग करते हैं कि जो लोकल और रीजन इलेक्शंस में चरमपंथियों की जो अहम भूमिका रही है उसको वो नेशनल लेवल पर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सही है कि ये जो पहला दौर राष्ट्रपति चुनाव का था ये काफी क्लोजली कंटेस्टेड था, लेकिन दूसरे दौर में मेरे ख्याल से फ्रेंच वोटर्स रैली करके जो है फ्रंट नेशन को नहीं आने देंगे।
चुनाव जीतने पर इन दोनों उम्मीदवारों के सामने सवाल होगा संसद में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पहुंचाना। मैक्रों की पार्टी का तो संसद में कोई अस्तित्व ही नहीं, दूसरी तरफ मरीन लपेन की पार्टी के भी सिर्फ 2 सदस्य ही संसद में हैं। अगर इनमें से कोई जीत भी गया तो उसके लिए अपनी नीतियों को लागू करवा पाना मुमकिन नहीं होगा। नेपोलियन का देश दुनिया भर में अपनी खास जीवन शैली, उदार सोच और सांस्कृतिक महत्व के लिए विख्यात है। यूरोप जाने वाला हर सैलानी अपने दिल में पेरिस देखने की तमन्ना लेकर जाता है, लेकिन हाल के दिनों में इसने लोगों में थोड़ी आशंकाएं भी पैदा की हैं। ये सवाल फ्रांस के बाहर भी पूछा जा रहा है कि मौजूदा चुनौतियों में क्या फ्रांस अपनी पहचान बरकरार रख पाएगा। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
दुनिया जहान के बारे में लिखिएगा अपनी राय। खेलों के बारे में आपको बता दें कि IPL में थोड़ी देर में राइजिंग पुणे सुपर जायंट और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला शुरू होने वाला है। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। दिल्ली में नगर निगम चुनाव में भाजपा को भारी जीत, आम आदमी पार्टी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के कर सुधारों का खाका पेश करने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इमैनुअल मैक्रों के चुनाव प्रचार की टीम ने पुष्टि की कि कम से कम 5 बार साइबर हमला करके उनके चुनाव प्रचार को निशाना बनाया गया, लेकिन कोई भी साइबर डेटा चोरी नहीं किया गया है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।